ओम शांति। योग बल जमा करने की लगन दीदी ने बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया तथा योग की विभिन्न स्थितियां। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि योग बल जमा करने की लगन क्यों आवश्यक है और उस लगन को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले योग बल किसको कहते हैं? योगाभ्यास के द्वारा जो हम शक्तियां बाबा से प्राप्त करते हैं उसको ही योग बल कहते हैं। ज्ञान का बल, पवित्रता का बल, योग बल। तो योगाभ्यास के द्वारा सर्वशक्तिवान परमात्मा से जो बल, जो शक्तियां हम प्राप्त करते हैं उसको योग बल कहते हैं। और योग बल जमा करना क्यों आवश्यक है? पहली बात, योग बल जमा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि योग बल से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। तो मोबाइल की बैटरी तो एक दो घंटे में चार्ज होती है, लेकिन आत्मा की बैटरी कितने वर्षों से हम चार्ज कर रहे हैं, जब से ज्ञान में आए वो फुल चार्ज हो ही नहीं रही है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं फिर भी बैटरी फुल चार्ज नहीं हो रही है। उसका कारण क्या है? सवेरे शाम जो हम योगाभ्यास करते हैं, थोड़ी सी शक्तियां प्राप्त करते हैं और सारे दिन भर में वो शक्तियां यूज भी करते हैं, प्लस माइनस बराबर। सारे दिन भर में कितने संकल्प क्रिएट करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है, एक मिनट में 15 से 20 तक संकल्प हम करते हैं क्रिएट मन में। कभी सकारात्मक होते हैं, कभी नकारात्मक होते हैं, कभी व्यर्थ होते हैं, कभी कर्म करने के लिए होते हैं। कितनी ऊर्जा हम यूज करते हैं। तो जितना कमाते हैं उतना खर्च करते हैं, बैलेंस है ही नहीं, कांटा कैसे ऊपर जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा अभी योग बल जमा करो। शक्तिशाली योगाभ्यास से साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, बाबा ने स्पष्ट कह दिया है। अभी जो समय चल रहा है वो शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। बहुत होशियार बिजनेसमैन 3 बातें हमेशा चेक करता है, कितनी मेरी अर्निंग है, कितनी मेरी स्पेंडिंग है और कितनी मेरी सेविंग है। अर्निंग मेरी मैक्सिमम हो, योग बल बहुत मैं जमा करूं, स्पेंडिंग बहुत कम खर्चा शक्तियों का मैं करूं, तो सेविंग बढ़ती जाएगी और बैटरी चार्ज होना और तेजी से होती रहेगी, उसमें तीव्रता आएगी। इसलिए योग बल को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे क्लब में बैटरी चार्ज करने का चांस एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। तो घर जाने के पहले मुझे फुल चार्ज करके जाना होता है। कभी मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए रखते हैं, जरूरी काम होता है तो एसी लेके चल पड़ते हैं, फुल चार्ज नहीं होते हैं एसी लेके चलते हैं, और बीच में वो धोखा देती है। तो घर जाने के पहले मुझे आत्मा रूपी बैटरी को फुल चार्ज करना है। चार्ज हो रही है उसकी निशानी क्या है? हैं जी, चार्ज होने की निशानी ये चेहरे पर दिखाई देती है। भोजन करने के बाद चेहरा एकदम खुशनुमा होता है, ऐसे आत्मा को शक्तियों का भोजन मिलता है तो नशा और खुशी बढ़ती जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ती है, चेहरा बोलता है। डिस्चार्ज बैटरी, चेहरा बुझा हुआ है, उतरा हुआ है, और चार्ज बैटरी, खुशनुमा चेहरा, यह उसके निशानी है। ठीक है, दूसरी बात, सिर पर हमारे 63 जन्मों का पापों का बोझा है, उसको हमें उतारना है। और उसके लिए हमें आवश्यकता है योग बल की। पाप कर्म साधारण याद से भस्म नहीं होते हैं, उसके लिए शक्तिशाली योग बल की आवश्यकता होती है। तो धीरे 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 जैसे जैसे पाप का बोझा कम होता है, हल्कापन हमें लगता है, लाइटनेस और हैप्पीनेस बढ़ती है। किसी को 10 लाख रुपया देना है तो सिर पर बोझा रहेगा, सूक्ष्म बोझा कि 10 लाख देना है, लेकिन 2 लाख दिया, 5 लाख दिया, 10 लाख पूरा हो गया, अभी मैं हल्का हो गया। ये सूक्ष्म बोझ जो होता है वो पापों का धीरे धीरे कम होता जाता है, हल्कापन खुशी का अनुभूति हमें होती है। तो साधारण योगाभ्यास से ये नहीं होता है, कर्म करते समय जो योगाभ्यास करते हैं उससे पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। तो क्या होता है भाई, कर्म करते हुए योगाभ्यास करने से पहला लाभ होता है, कर्मों में दिव्यता आती है। दूसरा लाभ है, हमारे से कोई नए विकर्म बनते नहीं है, और तीसरा लाभ यह है, कर्म योगी बनने से जब हम बैठक का योग करना चाहते हैं उस समय बहुत जल्दी हमें करण बाबा से मिलने लगता है। तो कर्म करते समय हमारे विकर्म भस्म नहीं होते हैं, क्योंकि हल्की फुल्की याद रहती है, फरिश्ता स्थिति की याद रहती है। तो पापों को खत्म करने के लिए आवश्यकता है योग बल की, शक्तिशाली योगाभ्यास के। समझा? हम कहेंगे हल्के चलते फिरते, क्योंकि कर्म करते समय कुछ भान हमारा कर्म में बिजी रहता है, और बचा हुआ भान हम बाबा के तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो हल्की फुल्की याद हमें रहती जरूर है, लेकिन आवश्यकता है अभी योग बल की, जिससे हमारे पाप भस्म होते जाएंगे, पाप हमारे शक्तिशाली याद से बीज रूप स्थिति से ही भस्म होते हैं। हाँ जी, बीज रूप स्थिति से ही पाप हमारे भस्म होते हैं या ज्वाला स्वरूप स्थिति से? अब बीज रूप स्थिति क्या है वो हम आगे स्पष्ट करेंगे। तीसरी बात, योग बल से हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता जाता है। हम यहां क्यों आए हैं बाबा के पास? पुराने जो संस्कार हैं उनका परिवर्तन करने के लिए आए हैं। अब हर रोज अभ्यास करते हैं योग का, हर रोज, फिर भी पुराने संस्कारों के अंश वंश आत्मा में दिखाई देते हैं। कभी ऐसा माहौल आता है फट से रोब आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है फट से हम फीलिंग में आ जाते हैं। तो पांचों विकारों के जो अंश आत्मा में है, जो छोटे मोटे दाग मुझ आत्मा पर है, जो मेरी वैल्यू को घटा रहे हैं, उन दागों को मुझे जड़ से उखाड़ के फेंकना है। उसके लिए योग बल की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार योगाभ्यास से नरम भी होते हैं, गरम भी होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते हैं। मेल्ट होने के लिए योग की अग्नि चाहिए, योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति चाहिए। सोने को गर्मी में डालते हैं, अग्नि में डालते हैं, वो गर्म भी होता है नरम भी होता है, लेकिन वो पिघलता तब है जब उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचता है, टेम्परेचर पहुंचता है, तब उसका लिक्विफिकेशन होता है, पानी में परिवर्तन होता है। गर्म भी हो गया, नरम भी हो गया, लाल भी हो गया, लेकिन पिघला तो नहीं। उसके लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की, योग बल की। नहीं तो बाबा का नाम बदनाम होता है। वहां जाते हैं और राजयोग करता है, अभ्यास करते हैं, और अभी भी गुस्सा आता है, अभी भी फीलिंग आती है, अभी भी चिड़चिड़ापन है। तो ये जो अंश है, हम कहां जा रहे हैं? विष्णु वंश में जा रहे हैं। विष्णु अर्थात जिसमें विकार का विष का अंश भी न हो, विष नो, नो पॉइजन, नॉट ए ट्रेस ऑफ पॉइजन, अंश भी उसमें न हो, तो उसके लिए आवश्यकता है योग बल की। ठीक है, अब चौथी बात, योग बल मनसा सेवा करने के लिए आवश्यक है। मेरे पास योग बल के शक्तियों के खजाने होंगे तो मैं दे सकूंगा, खुद का ही जेब खाली है, देना चाहता हूं कैसे दूंगा? तो भी आप देखना, जल्दी निकट भविष्य में मनसा सेवा करने का बहुत चांस मिलने वाला है। बाबा ने स्पष्ट कहा है, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। ये बाप दादा के महावाक्य हैं। तो चार साल तीन चार साल के बाद आप देखना वाचा कर्मणा सेवा ठप हो जाएगी, केवल मनसा सेवा का बोल बाला होगा। सिचुएशन ऐसी आएगी जो हम लोगों के पास नहीं पहुंच सकेंगे, लोग हमारे पास नहीं पहुंच सकेंगे। तो दूर बैठे हुए हमें शांति शक्ति का दान देना होगा, उसके लिए मेरे पास योग बल जमा होना चाहिए, शक्तियों का स्टॉक बढ़ते रहना चाहिए। दिल मेरा बहुत बड़ा है लेकिन कुछ गोडाउन में माल ही नहीं है, खजाने खाली है। तो दिल भी बड़ा होना चाहिए और गोडाउन भरे हुए चाहिए। योग बल मेरे पास जितना होगा उतनी आत्माओं की मैं सेवा करता रहूंगा। केवल मैं जिस स्थान पर हूं उस स्थान के लिए निमित्त नहीं हूं, मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, इसलिए मेरे पास बहुत खजाने शक्तियों के शांति के होने चाहिए। 10 बच्चे की माँ होती है तो सोचती है 10 बच्चों के लिए मैं कैसे भोजन ये सामग्री इकट्ठा करके रखूं, पहले से ही सोचती है। और इतने सारी आत्माओं को मुझे देना है तो योग बल खजाने मेरे पास खूब होने चाहिए। खजाने पाने का आधार क्या है? हाँ जी, खजाने पाना चाहते कैसे मिलेंगे? भट्टी में हम बैठे हैं क्यों? बाबा से खजाने पाने के लिए। लेकिन कैसे मिलेंगे? हाँ जी, खजाने पाने का एक ही आधार है, खो जाना तो खजाना, नहीं तो नहीं। खुद में खो जाना, खुदा में खो जाना, सागर में डूब जाना, शक्तियों के लहरों में लहराने से हमें केवल आनंद मिलेगा लेकिन सागर में डूबने से माल मिलेगा। हीरे मोती माणिक मोती माल तो नीचे हैं सागर में। तो बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव रूपी खजाने माणिक मोती नीचे है। इसलिए हमें योग बल को खूब बढ़ाना होगा, योग की बहुत गहन अनुभूतियां करते रहना होगा। इसलिए बैठक का योग बढ़ाना होगा। योग बल जमा करने की कंडीशन एक ही है, बैठक का योग करना है। धुन लगी रहे, लगन माना धुन लगी रहे कि मुझे योग बल जमा करना है, योग बल जमा करना है। किसी को टीवी देखने की धुन होती है, किसी को खेलने की टेनिस बॉल या कुछ भी व्हाट्सएप देखने की धुन होती है, तो जब भी टाइम मिलता है फट से व्हाट्सएप देखेगा, फट से टीवी देखेगा। तो मुझे योग बल जमा करने की धुन लगी, जब भी समय मिलता है चले बाबा के पास बैठ जाओ, क्योंकि बैठक के योग में मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारा बाबा पर होता है और हम बहुत शक्तियां बाबा से प्राप्त करते हैं। और योग बल जमा करने के लिए हमें एक ध्यान देना है, लीकेज को बंद करना है व्यर्थ के। व्यर्थ जब स्टॉप होगा तो योग बल का स्टॉक बढ़ेगा, शक्तियों का स्टॉक बढ़ेगा। एक तरफ प्राप्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ लीकेज हो रहे हैं शक्तियां, कैसा स्टॉक होगा? इसलिए हमें इस लीकेज को भी बंद करना होगा। लीकेज को बंद करने की बहुत सुंदर तीन युक्तियां हैं, केवल तीन युक्तियां हैं। आत्मा, आत्मा का फुल स्टॉप लगाना बिंदु में, सामने जो भी आत्मा आती है बिंदु बिंदु, भाई भाई, बस भाई, एक पिता के संतान, बात खत्म। उस व्यक्ति को देखेंगे, इसका नाम ये है, ये काम करता है, ये यहां से आया, इसमें ये गुण है, इसमें ये अवगुण है, बिना मतलब पांच सात संकल्प यूं ही चल पड़ते, कोई जरूरत नहीं। बिंदु में आत्मा, ये बिंदु आत्मा, भाई भाई, एक पिता के संतान, फुल स्टॉप। दूसरी युक्ति है ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना। कोई भी अनहोनी बात, अच्छी या बहुत बुरी या बहुत अच्छी होती है, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखना है। ज्ञान हमारे पास है लेकिन उसको यूज करना है। और तीसरी युक्ति, खाली मन शैतान का घर। मन को कभी भी खाली नहीं रखना है, ज्ञान का भोजन, मुरली का भोजन उसको खिलाते रहना है, तो व्यर्थ बढ़ता जाएगा, व्यर्थ घटता जाएगा और समर्थ बढ़ता जाएगा और शक्तियों का स्टॉक बढ़ता जाएगा। तो मनसा सेवा करने के लिए हमारे पास योग बल बहुत जमा होना चाहिए। उसके लिए लगन, योग बल को जमा करने की लगन बहुत आवश्यक है। और पांचवी बात, अंतिम पेपर में फुल मार्क्स लेने हैं तो मेरे पास योग बल होना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम पेपर हलचल के माहौल में होगा। ऐसे कमरे में बैठकर योग लगाने से नहीं होगा, चारों तरफ हलचल माहौल होगा, अंधाधुंध समस्याएं होगी, ऐसे माहौल में हमें पेपर देना होगा। योग बल जिनके पास होगा वो अच्छा लडोल रहेंगे और पेपर में अच्छे मार्क्स से पास होंगे। जिनके पास योग बल नहीं होगा वो हलचल में आएंगे, माया उनको नचाती रहेगी और वो पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकेंगे। इसलिए लंबे समय का योगाभ्यास करते करते मुझे योग बल जमा करना है। योगाभ्यास का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? योग बल, तपोबल, योग की शक्तियां। तो इन और भी बातें कुछ हो सकती हैं, लेकिन इन पांच बातों को हमें ध्यान रखना है। और मुझ आत्मा के पास बहुत शक्तियां, योग की शक्तियां, अष्ट शक्तियों के रूप में हमें वो योग की शक्तियों को यूज करते रहे और उसको बढ़ाते जाएं। ठीक है, बाबा से सवेरे शाम योगाभ्यास के द्वारा शक्तियां लेते रहें और उनको सारे दिन भर में अष्ट शक्तियों के रूप में यूज करते रहेंगे तो ये शक्तियां बढ़ती जाएगी, योग बल बढ़ता जाएगा। अभी इस लगन को कैसे बढ़ाएं? आप तैयारी कर रहे हैं ट्रेन में पहुंचने की या फ्लाइट में बैठने की, और अचानक मैसेज आता है फ्लाइट का टाइम चेंज हो गया है और एक घंटे में आपको पहुंचना है। कितनी मेहनत करेंगे? फटाफट 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 तैयारी करेंगे। तो अभी एक बात अंडरलाइन करना है, अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। हालत देखो दुनिया की, कहीं कहते हैं जब समय आएगा तब करेंगे, लेकिन अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। इसलिए मुझे योग बल बढ़ाने की धुन, लगन बढ़ाना है। जब चिड़िया चुक गई खेत तो पछताने से क्या फायदा, ये समय हाथ से निकल गया तो हाथ मलते रहना होगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। समय अभी मेरे पास है। बड़े भाग्य से हमें ये समय की घड़ियां मिली है भाग्य बनाने के लिए, इसलिए एक एक घड़ी को हमें सफल करना है। अंत में करेंगे, उस धोखे में हमें नहीं रहना है। इसलिए उड़ती कला में उड़ते रहना का अभ्यास बढ़ाते जाना है, तीव्रता पुरुषार्थ में बढ़ाना है, लगन को बढ़ाना है, धुन को बढ़ाना है, क्योंकि समय स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इनसिक्योरिटी, चारों तरफ इनसिक्योरिटी बढ़ रही, माहौल बहुत डेलिकेट होता जा रहा है, कब क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अचानक, दूसरा पॉइंट है अचानक और एवर रेडी, ये दो शब्दों का गीत बाबा कहते हैं अनहद नाद के रूप में आपके कानों में सदा बजते रहे। अचानक कुछ भी हो सकता है, मुझे एवर रेडी रहना है। बाबा की मुरलियां चली है, जिस समय बाबा का समय का इशारा देता है, बाबा के चेहरे की तरफ देखो, आंखों की तरफ देखो, समय पर भरोसा नहीं रखो। समय कभी भी धोखा दे सकता है। कितनी कल्याण की भावना से हमें बाबा बता रहे हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, फिर भी हम अलबेले होके चल रहे हैं। तो समय मेरे हाथ से निकल जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो होशियार विद्यार्थी होते हैं ना, वो कभी भी कल और काल पर भरोसा नहीं रखते हैं। कल और काल पर कभी भी वो भरोसा रखते ही नहीं है जो होशियार विद्यार्थी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। मुझे जो करना है वो अभी और आज करना है, वर्तमान में वो जीते हैं, भविष्य और भूतकाल में नहीं वो जीते हैं। इसलिए कहावत बहुत अच्छी है, भूत है सपना, भविष्य है कल्पना, वर्तमान है अपना। वर्तमान मेरा है, मेरे हाथ में है। भूत तो सपना है, पूरा हो गया, भविष्य तो कल्पना है, कल्पना करने से क्या मिलेगा। और वर्तमान मेरा है, मुझे वर्तमान का एक एक पल को सफल करना है। सफल मेरा समय हो रहा है, कैसे पता चलेगा भाई, है जी? एक घड़ी के कांटे को रोकने की, पकड़ने की किसी की ताकत नहीं है। घड़ी के कांटे को पकड़ने की किसी की भी ताकत नहीं है। तो ये जो घड़ी चल रही है ना इतनी बेहद की, उसका जो कांटा है उसको रोकने की किसी की ताकत नहीं है, लेकिन समय को पकड़ना, माना समय को सफल करना। ट्रेन को आपने पकड़ लिया तो ट्रेन में बैठ गए, जयपुर पहुंच गए, ट्रेन छूट गई, माना वहीं के वहीं खड़े हैं। तो समय को पकड़ना, माना समय को सफल करना। इसलिए बाबा कहते हैं समय को सफल करना सबसे बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। सफल माना अच्छा फल पाना, अच्छी प्राप्ति करना। हरेक आत्मा को बाबा ने समय का खजाना दिया है पुरुषार्थ करने के लिए, तो उस खजाने को मुझे सफल करना है तपोबल जमा करने में, योग बल जमा करने में। वो कांटा क्या कहता है, टिक 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 चलती है ना घड़ी की, वो ठीक 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 ठीक, अरे ठीक तो है लेकिन कमाओ, कमाना भी तो है ना, ठीक होने से चलेगा क्या, और प्राप्ति भी तो करनी होगी ना। तो खजाने मुझे तपोबल योग बल बहुत अच्छी तरह से जमा करना है, एवर रेडी रहना है। विश्व किशोर भाऊ की एक बैग हमेशा एवर रेडी रहती थी दादा की, जब बाबा का कोई भी ऑर्डर हो तो फट से चल पड़ते थे सेवा में। तो हमें एवर रेडी रहना है, एवर रेडी रहना है। कैसे रहेंगे भाई, मुझे घर जाना है, मधुबन में किसी को आना होता है तो कितने दिन से तैयारी करते हैं, हफ्ते से 10 दिन से करते हैं। अभी हमें तो घर जाना है 5000 वर्ष के लिए, तो मुझे एवर रेडी रहना है। एवर रेडी रहने के लिए दो बातें चाहिए, बेदाग हीरा बनकर मुझे जाना है और झोली मेरी भरपूर हो खजानों से, तो समझो मैं रेडी हूं। जब भी मुझे बाबा बुलाएं मैं तैयार हूं। कल अचानक मधुबन में किताब सिंह भाई अभी अभी भंडारे में सेवा करके आए और 12 बजे तकलीफ हुई थोड़ी सी और चले गए अचानक चलते चलते। तो एवर रेडी माना अंदर से फीलिंग हो कि मैं रेडी हूं, मैंने बहुत अच्छी तरह से योग बल जमा किए हैं, खजाने जमा किए हैं, जो सारे कल्प के लिए मैं अपने लिए, भक्तों के लिए, प्रजा के लिए, संबंधों के लिए, इतने सब के लिए, खुद के लिए नहीं, राजा बनने वाला प्रजा का भी तो ध्यान रखेगा ना, खुद का ही रखेगा क्या। तो मेरे लिए, संबंधियों के लिए, प्रजा के लिए, भक्तों के लिए, इतने सारे खजाने घर जाने के पहले जमा करने हैं। कितनी मेहनत करनी होगी, कितनी लगन से पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए किसी को पता नहीं मेरा अंतिम श्वास कौन सा होगा, किसी को पता नहीं। इसलिए मम्मा कहती थी हर श्वास को अंतिम श्वास समझकर चलो, तैयारी करो, एवर रेडी रहो। तो कहने का भाव है अभी सेवा करना हमारा धर्म और कर्म है, सेवा तो करना है, लेकिन उसके साथ धुन लगी रहे मुझे योग बल जमा करना है। ये जो बल्ब है ना, इसका वोल्टेज बढ़ाना है, ये बल्ब विश्व का लाइट बन जाए, इतनी पावरफुल। जितना योग बल बढ़ेगा उतनी उसकी पावर बढ़ेगी, लाइट देने की क्षमता बढ़ेगी। 1000 वोल्टेज का बल्ब बाथरूम पे तो नहीं लगाएंगे ना, चौराहे पर लगाएंगे, हजारों लोग उसका फायदा लेंगे। तो ये बल्ब बहुत प्रखर होगा तो सारे विश्व को सका देगा। तो इसलिए हमें ध्यान देना है, बस तात लगी रहे, बस लगन लगी रहे, धुन लगी रहे कि मुझे योग बल जमा करना है। क्योंकि धीरे धीरे कभी कभी हम अलबेले हो जाते हैं। अलबेलापन, बाबा ने कहा है, साधना में सबसे बड़े शत्रु हैं आलस्य और अलबेलापन, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। काम मा शत्रु हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन साधना के क्षेत्र में आलस्य और अलबेलापन ये सबसे बड़े शत्रु हैं। किसी को पास आने नहीं देना है, हमेशा रेस का घोड़ा जैसा रहता है, एक्टिव और अलर्ट, ऐसा हमें रहना है। हम सभी रेस के घोड़े हैं, आत्मा रूपी घोड़े रेस में दौड़ रहे हैं, और रेस किसमें है, रेस किसमें है, योग के सब्जेक्ट में रेस है, योग बल जमा करने में रेस है। कितना अच्छा भाषण कर रहे हैं उसमें रेस नहीं, कितनी अच्छी धारणा करे उसमें भी रेस नहीं, वो तो कर ही रहे। सेवा कितनी अच्छी करे उसमें भी रेस नहीं, रेस है हमारी योग में। इसलिए जितना योग बल जमा करेंगे उतना इस रेस में हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी योग की स्थितियां, भिन्न भिन्न स्थितियां कौन सी हैं, वो थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे। योग की मुख्य तीन स्थितियां हैं। पहली है रूह रिहान, रूह समझकर बाबा से रिहान करना, अर्थात बाबा से बातें करना, वार्तालाप करना, इसको कहते हैं रूह रिहान करना। दूसरी स्टेज है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना, और तीसरी स्टेज है बीज रूप की स्थिति की अनुभूति करना। और जब बहुत पावरफुल बीज रूप स्थिति होती है, बहुत पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल, उसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग। शक्तिशाली बीज रूप स्थिति, पावरफुल बीज रूप स्थिति, अग्नि योग की ज्वाला की तरह धधकने लगती है, उसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास। अभी रूह रिहान, पहली स्थिति रूह रिहान की, मैं आत्मा इस स्थूल शरीर में हूँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में है, जिसने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, हमारी पालना कर रहा है, तो ऐसे एकांत में बैठकर या कर्म करते हुए भी हम बाबा से बातें करते हैं, रूह रिहान करते हैं, बुद्धि हमारी बाबा से जुड़ी हुई होती है, रूह रिहान करते हैं। अभी इसमें संकल्पों का नंबर कम होता है और प्यार का परसेंटेज जब बढ़ता है, संकल्पों का नंबर कम होता है और प्यार का परसेंटेज बढ़ता है, तो उससे स्थूल देह का भान हम भूल जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, और लाइट के शरीर का भान हमें होता है, और हम अनुभव करते हैं मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में हूँ और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हैं, वहाँ रूह रिहान चल रही है, इसको हम फरिश्ता स्थिति कहेंगे। अभी जैसा जैसा अभ्यास कर रहे हैं, संकल्पों का नंबर कम होता जा रहा है, प्यार का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जो लाइट का शरीर है उसका भी भान हम भूलते जाते हैं और परम धाम में बाबा के पास चले जाते हैं और वहां पहुंचते हैं परम धाम में। अभी ये जो याद की यात्रा है, यहां से हम वहां गए, इस यात्रा में क्या होता है, संकल्पों का नंबर घटता जाता है और प्यार का परसेंटेज बढ़ता जाता है। मान लीजिए पहले मिनट में मुझे 4 संकल्प है, दूसरे मिनट में मुझे 3 संकल्प है, दूसरे मिनट में मुझे 2 संकल्प चल रहे हैं, उसके बाद मुझे 1 संकल्प चल रहा है, उसके बाद कोई संकल्प नहीं चल रहा है, निर्संकल्प समाधि है, केवल ऐसा अनुभव हो रहा है बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं, उनसे मैं अथाह शक्तियां स्वयं में आत्मा ग्रहण कर रही हूं, इसको बीज रूप स्थिति कहते हैं। क्यों बीज रूप स्थिति उसको कहते हैं, इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज आत्मा है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज परमात्मा है, और बीज माना मेरे मन में कोई भी संकल्प नहीं चल रहे, बिल्कुल निर्संकल्प समाधि में बिल्कुल हूं, आखिरी जो संकल्प चल रहा है, शक्तियां आ रही है, केवल अनुभव, उसको कहते हैं बीज स्थिति। और उसमें भी बहुत पावरफुल होता है और इंटेंसिटी बाबा से शक्तियां लेने की बढ़ती हैं, तो उसको ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं। तो ये जो पहली दो स्टेजेस हैं रूह रिहान और फरिश्ता स्थिति, इसका लाभ क्या होता है? कोई नया विक्रम हमारा नहीं बनता है, पहला लाभ। और दूसरा लाभ क्या होता है? जो शक्तिशाली योग की अनुभूति करना है उसके लिए हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, पूर्व तैयारी उसके लिए हम करते हैं। इसलिए रूह रिहान और फरिश्ता स्थिति की भी अनुभूति करते रहना सारे दिन भर में बहुत जरूरी है। और जब भी हम बैठक का योग करते हैं, फट से योगाभ्यास में हमारी एकाग्रता होती है। नहीं तो योग में बैठेंगे 5-10 मिनट हमारे ऐसे ही जाएंगे अपने मन और बुद्धि को संवारने के लिए, जो व्यर्थ है उसको हटाने के लिए। तो अभी समय की पुकार है, शक्तिशाली योगाभ्यास, बीज रूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। और उसमें भी ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास बढ़ाने की। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, मुरली में स्पष्ट कहा है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, अभी जो चल रहा है वो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। क्यों ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास का चल रहा है? क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज्यादा करने हैं हमें, बैटरी को चार्ज करना है, विकर्मों को भस्म करना है, योग बल को जमा करना है, अनेकों को देने के लिए, अंजलि देने के लिए, ये सब काम तब होगा शक्तिशाली योगाभ्यास से होगा। और ज्वाला स्वरूप योग का सीक्रेट बताता हूं आपको। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए लिखो मोटे रूप से 5 बातें चाहिए, 5 बात मोटे रूप से। पहली बात, बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति हमारे पास करने का कला चाहिए, बहुत गहरी और बहुत शक्तिशाली। गहरी अर्थात देह का भान बिल्कुल ना हो, जीरो हो, और आत्मा का भान जस्ती से जस्ती हो, उसको कहेंगे गहरी आत्म अनुभूति। और शक्तिशाली अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, केवल आत्मा नहीं हूं। पावरफुल वोल्टेज होगा तो बाबा जो पावर हाउस है उनसे बहुत शक्तियां हम अपने में ग्रहण कर सकेंगे और ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति होने लगेगी। दूसरी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परम मातम अभिमानी स्थिति की आवश्यकता है। परमात्म अभिमानी, बहुत गहराई की अर्थात परम धाम में बाबा के पास बिल्कुल नजदीक जाके अच्छी तरह से गहराई से देखें, यहां से चले जाए और वहां बाबा के पास मैक्सिमम कॉन्शियस हमारा हो, 80-90% मैक्सिमम कॉन्शियस हो और एकदम समीप बैठ के बाबा का शक्तिशाली स्वरूप हमें अनुभव करना है। पावरफुल बाबा कौन सी हस्ती है? बाबा कह के हमने उसको ऑर्डिनरी बना दिया, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है। ये सूर्य जो है ना, ऐसे हजारों सूर्य पैदा कर सकता है वो, इतनी पावर उसमें है। सारे संसार की आत्माओं को शक्ति देने की क्षमता उसके पास है। उसके इशारे पर तीनों लोक का कारोबार चलती है। कितनी पावरफुल हस्ती होगी आप सोचो तो सही जरा। बाबा कह के हमने ऑर्डिनरी कर दिया। बाबा तो है, लेकिन जैसे अर्जुन ने कहा हजारों सूर्य से शक्तिशाली परमात्मा स्वरूप है, ऐसा हमें बाबा का स्वरूप देखना है। अभी तो बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में बाबा ने पालना हमें दे रहे हैं। धर्मराज के रूप में होन देंगे ना, सामने खड़े होने की हमारी हिम्मत नहीं होगी। इतना बाबा का प्रखर स्वरूप है। तो कहने का भाव है परम धामी ऐसा प्रखर स्वरूप हमें देखना है और अनुभव करना है, तब ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती रहेगी। तीसरी बात, ऐसी ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करना अगर हम चाहते हैं तो हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर हो। जब ईश्वरीय नशे से मन बुद्धि भरपूर होती है तो योगाभ्यास में जो अनुभव होते हैं वो कुछ हटकर होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, बहुत गहन अनुभव होते हैं। ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति तब हमें होती है। भगवान से मिल रहे, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से मिल रहे हैं और मन में खुशी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी के निभाने के हिसाब से बैठे हैं, योग कर रहे हैं, तो मन बुद्धि खुशी से भरपूर, नशे से भरपूर होगी, तो ऐसी गहन अनुभूति योगाभ्यास में हमें होती है। इसके लिए सारे दिन भर में स्वमान के सिंहासन पर डटे रहना है, बैठे रहना है, उसको हमने छोड़ना नहीं। हम राजे महाराजे बैठे हैं यहाँ सारे, राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा शासन करता है, मैं आत्मा स्वमान के सिंहासन पर बैठी रहूं और अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया उस पर नियंत्रण और अनुशासन करती रहूं, स्वयं का राजा बनकर रहूं, स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करते रहूं। तो स्वमान में रहना है। छोटा बच्चा क्या करता है, बाप का हाथ पकड़ता है, कहीं गिर न चला जाए, कहीं पैर फिसल न जाए। तो हम बच्चे हैं सभी, तो स्वमान का हाथ हमें जरूर पकड़ना है। स्वमान का हाथ क्या करता है, भगवान का साथ हमें दिलाता है, भगवान का साथ अनुभव कराता है स्वमान का हाथ। अगर स्वमान का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो भगवान का साथ आपको नहीं मिलेगा भाई, हो सकता है मिले हुए न मिले, कोई गारंटी नहीं। बीज भवर में इधर ही भटकते रहती है बुद्धि हमारी इसी घटिया दुनिया में। तो स्वमान हमें एकदम ऊंचा ले जाता है, मन बुद्धि हल्की फुल्की होती है और वो ऑटोमेटिक बलून की तरह ऊपर चले जाती है, बाबा के पास बैठा देती है। ये स्वमान काम करता है। स्वमान में नहीं रहेंगे ना, आपकी बुद्धि इसी साकारी दुनिया में भटकती रहेगी, ऊपर जाएगी ही नहीं। योग करने बैठे, ऊपर जा ही नहीं रही मन बुद्धि, फायदा क्या भाई। लेकिन स्वमान में वो ताकत है, स्वमान में वो शक्ति है, स्वमान में वो क्षमता है जो मन बुद्धि को एकदम फ्लाइट मिल जाती है, एक सेकंड में फ्लाइट परमधाम की, बाबा के पास बिठा देता। आप देखना, स्वमान का अभ्यास आप करेंगे ना, ऑटोमेटिक मन बुद्धि बाबा के तरफ जाती है, ऑटोमेटिक जाती है, ले जाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक जाती है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से स्वमान रहता था, मैं नारायण बनने जा रहा हूं, शुरू दिन से मैं सारे संसार की जो प्रजा है उसका मैं पिता हूं। नारायण ने नशा बाबा के चेहरे से दिखाई देता था, वो मस्ती नशा। हमें भी कर्म भले करना है, लेकिन प्रकाशमणि दादी जी ने लास्ट में एक ही बात बताई, दादी से प्यार है, दादी जैसा बनना चाहते हो, केवल दो शब्दों को धारण करो, सदा स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। भाई सबको सम्मान देने के लिए हमें कोई जेब से पैसा देना पड़ता है क्या, रुपया डॉलर देना पड़ता है क्या, केवल दिल बड़ा रखना पड़ता है और मुख में मिठास रखनी होती है और कुछ नहीं। सम्मान दो, सबको सम्मान दो, सबके दिलों में अपना स्थान बना लो, सबसे स्नेह प्यार का व्यवहार कर लो तो वो क्या सम्मान देने से होगा। लेकिन सम्मान वो देता है जो पहले खुद को सम्मान देता है, अर्थात स्वमान में रहता है। अब खुद को ही मान नहीं देता औरों को क्या देगा भाई। खाना खाने के लिए मेरे पास ही रोटी नहीं तो औरों को कैसा दूंगा। तो पहले हमें स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना, दरिया दिल से देना है को, ठीक है ना। चौथी बात, समान ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए हमारे दिल में असीम परमात्म प्यार का असीम झरना, निरंतर अनवरत झरना बहता रहे। परमात्म प्यार का झरना दिल में सदा बहता रहे, बस बहता ही रहे। मेरा जो दिल का प्यार है किसी व्यक्ति वैभव के साथ मुझे शेयर नहीं करना है, केवल मैं सौदा उसके साथ किया है। वो सौदागर है, सच्चा सौदागर है, समझा। तो दिल में असीम प्यार होने से क्या होता है, प्यार ऐसी चीज है जो हजारों मीलों की दूरी आत्मा और परमात्मा में है वो सारी दूरी को खत्म कर देता है और कंबाइंड स्थिति की अनुभूति कराता है। और जब कंबाइंड स्थिति की अनुभूति करते हैं तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर है, दूसरी तरफ शक्तियों के सागर भी है। तो लवफुल स्थिति पावरफुल स्थिति में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है। जलता हुआ लाल कोयला मैं हाथ पर पकड़ता हूं ना, फट से मेरा हाथ जल जाएगा क्योंकि बहुत गर्म है, लाल है। तो इससे बाबा कंबाइन हो चुके हैं, एक तरफ प्यार के सागर और दूसरी तरफ शक्तियों के सागर भी है। तो लवफुल याद शक्तिशाली स्वरूप पावरफुल याद में परिवर्तन होती है और उसमें ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति ऑटोमेटिक हमें होती है, एकदम कंबाइंड हो जाए, शिव मैं बन जाए, खुदा पर एकदम फिदा हो जाए, अपने अस्तित्व को भी भूल जाए। उस सागर में मैं आत्मा खो गई, ढूंढने से भी नहीं मिल रही है, अपने को भान को भूल गए हम। और पांचवी बात, ये सीक्रेट है योग का, योग की प्रक्रिया में 100% कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है, 1% भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। जब हम योग करते हैं, आत्मा समझकर ज्ञान सूर्य बाबा को देखते हैं बुद्धि रूपी नेत्र से, उस प्रक्रिया में फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, तब हमें ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति होती है। उदाहरण सिंपल है, कागज धूप में हम जलाना चाहते हैं सूर्य की रोशनी में, लेकिन 10 दिन से मई मास की गर्मी है, खूब गर्मी है, जल ही नहीं रहा है कागज, इतनी गर्मी है सूरज की। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जलाना है तो मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ता हूं, कागज के ऊपर सूर्य की किरणें उससे जा रही हैं और जैसे मैग्नीफाइंग लेंस से पास हो रही तो लेजर किरणें की तरह हो रही हैं, प्रखर किरणें हो रही हैं। और ऐसी प्रखर किरणें फुल कॉन्सेंट्रेशन से एक बिंदु पर टिक जाती है तो प्रचंड आध्यात्म भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अग्नि का रूप लेती है और एक सेकंड में कागज राख बन जाता है। तीन से बुद्धि रूपी नेत्र से हम बाबा को ज्ञान सूर्य को देखते हैं तो बुद्धि रूपी लेंस के द्वारा ज्ञान सूर्य की जो शक्तियों की किरणें पास होती हैं वो लेजर किरणें की तरह होती हैं और वो फुल कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा आत्मा बिंदु पर पड़ती है तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, योग की ज्वाला धधकने लगती है और उस ज्वाला में हमारे कड़े ते कड़े 63 जन्मों के कठोर संस्कार मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। जैसे ज्वालामुखी में लोहा हो या पत्थर हो, सेकंड में नाम निशान मिट जाता है ज्वालामुखी में, जो लावा रस निकलता है उसमें, तो ऐसी ज्वालामुखी में हमारे विक्रम सेकंड में भस्म हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत अनुभूति हमें उसमें होती है, इतना हल्कापन लगता है। हम बाबा से पूछा 86 में, बाप दादा से हम मधुबन निवासी मिल रहे थे, सीधा प्रश्न बाबा को पूछा, क्योंकि हम मधुबन निवासी बाबा से मिलते हैं ना, ऑफिशियली नहीं मिलते थे, ओमली फ्रेंडली ऐसे एकदम मस्त, बाप और बच्चे मिल रहे हैं ना ऐसे, तो बाबा को प्रश्न पूछा कि बाबा शक्तिशाली योग की क्या निशानी है। बाबा ने कहा शक्तिशाली योग की दो निशानियां हैं, एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है, ये है शक्तिशाली योग की अनुभूति। अग्नि की तरह अनुभव होता है योग, उसमें मेरे विक्रम भस्म हो रहे, और दूसरे तरफ हल्केपन की महसूसता क्यों होती है, क्योंकि पापों का बोझ कम हो रहा है। खुशी की अनुभूति क्यों होती है, क्योंकि मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मंजिल की ओर जा रहा हूं, इसलिए खुशी की अनुभूति होती है। तो ऐसी दो अनुभूतियां होना ये शक्तिशाली योग की निशानी है, ठीक है ना। पावरफुल का मतलब क्या है, पावरफुल, वर जो बाबा है, हमारा जो साधन साजन बाबा है, वर्क समझते हैं ना आप लोग भाषा में, आपके वर माना साजन, वर पा वर फुल 100% भगवान को पा लेते हैं वर के रूप में, तो स्थिति हमारी पावरफुल होती है, योग बल हमारे पास बहुत जमा होता है। पावर हाउस से हमारा कनेक्शन हमेशा रहे, करंट आता रहेगा, बिजली के मास्टर बैठे हैं यहां भाई जी, तो ये पावर हाउस तो हद का है, बाबा स्पिरिचुअल पावर हाउस है, सारे संसार की आत्माओं को पावर देने वाले हाउस है, तो मैं आत्मा रूपी बल्ब की बुद्धि तार रूपी तार उनके साथ जुटी रहेगी, तो ये बल्ब में रोशनी रहेगी। जिसके घर में रोशनी रहती है वो सदा रोशन करते हैं, बाबा का नाम रोशन करते हैं। जिसके देह रूपी घर में रोशनी नहीं, ये बल्ब बुझा हुआ है, कैसे रोशन करेंगे भाई। मेरे मकान में आत्मा की रोशनी हमेशा ऑन हो, स्विच ऑन हो, माया ऑफ करेगी, मुझे ऑन करना है। रोशनी नहीं माना रोशनी, रुलाने वाला शनि पीछे पड़ा है। ओम शांति। अभी दीदी ने कहा है आधा घंटा योग करना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई कोई आंखें बंद कर रहे हो। भाई मेरा बाबा वाला गीत बजाओ ना, थोड़ा सा थोड़ा हो I'm not afraid। अभी एकदम चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, डायरी वायरी सब हटा दो, एकदम आजाद पंछी बन के बैठो मस्त। तीन स्टेजेस की हम अनुभूति करेंगे, पहले आत्मा की, रोरेहान की, फिर फरिश्ता स्थिति की, फिर बीज रूप की, 20-25 मिनट में। ओम शांति। इस देह रूपी महल में, इस देह रूपी महल में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा ब्रह्मकोटि के अकाल तख्त पर स्वमान के सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मैं आत्मा राजा हूं। स्वयं का, कर्मेंद्रियों का राजा हूं। राजाई की झलक, नशे की फलक मेरे चेहरे पर स्पष्ट अनुभव हो रही है। यह शरीर तो मेरा मकान है, यह स्थूल शरीर तो मेरा वस्त्र है, यह स्थूल शरीर तो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। निराकारी दुनिया से, अपने मूल वतन से मैं आत्मा इस धरा पर निराकारी रूप में आई थी। और सतयुग से लेकर संगम युग तक जन्म लेती रही, शरीर छोड़ती रही, लेकिन मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। भगवान ने मुझे नई दुनिया के स्थापना के महान कार्य के लिए करोड़ों में से सेलेक्ट किया है। मैं आत्मा हीरो एक्टर हूं, ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में तीनों लोगों की सैर करने निकला हूं, उड़ रहा हूं। इस आकारी दुनिया में विश्व के गोले से पार, बादलों से भी पार, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं, जा रहा हूं। ओह, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की नगरी, चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश। चारों ओर इस फरिश्तों की दुनिया में चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश, श्वेत प्रकाश इस फरिश्तों की दुनिया में है। मज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी और अति शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद ले रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप के ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि बल से निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। मेरा स्वीट साइलेंस हो ओ, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूँ, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य है, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। और मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। और योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति बाबा से बहुत योग की शक्तियां, योग बल प्राप्त कर रही हूँ। योग बल से भरपूर हो रही हूँ।
परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना।
निराकारी दुनिया से वापस, बुद्धि बल से वापस, वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और पुनः इस शरीर रूपी महल में मैं आत्मा राजा सिंहासन पर सोमान की विराजमान हो चुका हूँ। मोज शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रहे हैं। इस वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे प्रकृति में मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मोज मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति।